आयत नंबर 18 से देखेंगे हम। इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकाती व अक्रदुल्लाह कर्दन हसन युदाअफु लहुम व लहुम अजरुन करीम। बेशक सदका देने वाले और सदका देने वालियाँ और जिन्होंने अल्लाह ताला को कर्ज़े हसना दिया, कई गुना बढ़ा दिया जाएगा उनके लिए इनका माल और इनको अजरे करीम मिलेगा। इस सूरत में बार बार अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने की दावत है, और देखा जाए तो ये दावत इंसान को बज़ाहर अच्छी नहीं लगती, लेकिन इससे इंसान को फ़ायदा बहुत होता है। हम इंसान दिन रात गुनाह करते हैं, और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जो इंसान ना समझी में कर देता है, उसको नहीं पता चलता कि उसने ऐसा गुनाह क्यों किया। तो अल्लाह ताला उस गुनाह को धोने के लिए इंसान को अपने रास्ते में खर्च करने की दावत देते हैं। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का हुक्म शुरू से लेके पूरे कुरान पाक में कई मुख्तलिफ मुकामात पे आता है, लेकिन इस मुकाम पे इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ अल्लाह ताला ने मर्दों के साथ साथ ख़ास तौर पे औरतों की इस खूबी की बुनियाद पे तारीफ़ फरमाई है। क्या कि इन्नल मुसद्दिकीन, और बेशक सदका देने वाले, मुसद्दिक और मुसद्दिका ये स्वाद अलकाफ से है और बाब तफ़ील में है। इसमें किसी काम का हमेशा करना पाया जाता है। कोई काम एक दफ़ा कर दिया जाए, दोबारा ना किया जाए, तो वो काम उस काम के बराबर नहीं होता जिसको आप मुसलसल करें। तो यहाँ उर्दू तर्जमे में तो हम ये कह देते हैं ना कि बेशक सदका देने वाले और सदका देने वालियाँ, लेकिन अरबी लफ्ज़ की मुनासबत से अगर इसका सही तर्जमा किया जाए तो वो होगा हमेशा सदका देने वाले और हमेशा सदका देने वालियाँ। और कोई काम हमेशा वही करता है जिसको उस काम की आदत होती है। गोया के सिर्फ किसी के ऊपर रहम खाकर, तरस खाकर किसी को कुछ देने वाले लोग जो होते हैं वो मुसद्दिक नहीं कहलाते। ये वो लोग होते हैं जो हर वक्त हर लम्हे देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही मर्दों और ऐसी ही औरतों की अल्लाह ताला ने यहाँ ख़ास तौर पे तारीफ़ की। और अमूमन कुरान पाक में जहाँ भी नेकी का तस्करा आता है तो मर्दों का तस्करा करके उसी में औरतों को शामिल कर लिया जाता है, लेकिन कुछ मुकामात ऐसे होते हैं कि जहाँ मर्दों के साथ साथ औरतों का अलग से तस्करा किया जाता है, और ये मुकाम भी उन्हीं में से एक है कि अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ बता दिया अगर कोई मर्द नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं, इसी तरह अगर औरत कोई नेकी करती है या अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करती है तो वो भी उतना ही अजर पाएगी जितना कि किसी मर्द ने पाया। और साथ ही साथ इससे ये भी पता चलता है कि मर्द की तरह औरत भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकती है। अमूमन क्या होता है कि हमारे यहाँ कमाने का जिम्मा मर्दों के जिम्मे होता है, और औरतों को भी जो माल मिलता है अमूमन तो शोहरों से मिलता है, बाज़ दफ़ा माँ बाप की तरफ से या भाई बहनों से तोहफे तहाइफ की सूरत में मिलता है। तो यहाँ इशारतन एक और बात भी पता चलती है, और वो क्या है कि इंसान को कुछ भी माल मिले, कहीं से भी मिले, इंसान के बजाय अगर आप औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, कि औरत अपने माल को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती है। अगर आपके पास कुछ माल रखा है और अगर आप अपने शोहर को ना भी बताना चाहें और इसके बगैर ही आप खर्च करना चाहें तो कोई हर्ज की बात नहीं। सवाल पैदा होता है कि शोहर के माल में से खर्च करने के लिए क्या हुक्म है। अमूमन ख़वातीन को घर के खर्च के लिए, बच्चों की ज़रूरियात के लिए कुछ ना कुछ जेब खर्च मिलता है, तो क्या फिर औरत उसमें से अल्लाह के रास्ते में दे सकती है, और अगर देती है तो फिर अजर का क्या मामला है। तो इसमें हालात को देखा जाएगा। अगर कोई मर्द औरत को कुछ भी रकम दे देता है, अब औरत की मर्जी है सारा उजाड़ दे, सारा खर्च कर ले, कुछ बचा ले, या अपने ही खर्च को थोड़ा सा कम करके उसमें से कुछ सदका दे दे, तो औरत को इजाज़त है। इस सूरत में जब औरत खर्च करेगी तो औरत को तो सवाब होगा ही होगा, उसके शौहर को भी होगा। यानी वो खर्च जो मर्द ऑलरेडी औरत को दे चुका है, उसके बाद वो माल में से अगर खर्च करती है तो मर्द को भी सवाब होगा। इसके अलावा शौहर का माल कहीं रखा हुआ है, उसने बीवी के पास अमानतन रख दिया, या अमूमन सेविंग्स जो होती हैं वो घर में ऐसी जगह रख दी जाती हैं कि जहाँ सबको ही पता होता है, या कम अज़ कम शौहर और बीवी दोनों को पता है, तो अब बीवी क्या शौहर की मर्ज़ी के बगैर या उसको बताए बगैर सदका कर सकती है? तो नहीं कर सकती। क्यों? हो सकता है शौहर बाहर किसी से कमिटमेंट करके आ जाए, उसने किसी खास रकम के लिए जमा किया हो, किसी को उसने कर्ज वापस करना हो। ऐसे तमाम मामलात में जो बेहतरीन अमल होता है वो मशवरे का होता है। इवन अगर एक औरत खुद अपने माल को खर्च करती है, शरण उसको कोई इसमें कबाहत नहीं, लेकिन अच्छे घरेलू माहौल को कायम रखने के लिए, आपस में एक अच्छा ताल्लुक कायम करने के लिए मशवरा बहरहाल अच्छा है। ये कहने की बजाय कि दे दूं, क्या ख्याल है, आपकी इजाज़त है, इतने सख्त लफ्ज ना बोलें, आराम से कह दें कि मैं यहाँ देना चाहती हूँ, आपका क्या ख्याल है, आपका क्या मशवरा है। और आप देखेंगे कि जब आप इस अंदाज से बात करते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा जिसने एतराज़ करना भी होता है वो नहीं करता। इसकी वजह क्या होती है कि जब हम लोगों को अपना हरीफ बना लेते हैं ना, मुखालिफ कर लेते हैं, तो फिर बाज़ दफ़ा वो छोटी छोटी बातों पर तनकीद करते हैं। फिर एक और छोटी सी चीज़ हो सकती है कि बाज़ दफ़ा मिजाज के अंदर बुखल हो सकता है, या शौहर का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो क्या फिर ऐसी औरत जो है वो बिल्कुल ना दे या क्या करे। तो फिर हर औरत को इस बात की समझ होती है कि मेरे बाकी काम किस तरह से होते हैं, जिस तरह वो बाकी मामलात को करती है। अगर इसमें बताए और बगैर कुछ भी अपने माल में से देती है या उस शौहर के दिए हुए माल में से देती है और जिक्र नहीं करती, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बंदे के हालात को जानता है और उसको उसका अजर देगा। फिर आगे कहा, वह अकरदुल्लाह कर्दन हसना, और जिन्होंने अल्लाह को कर्ज़े हसना दिया, पहले सदके की बात थी, अब कर्ज़ की बात है। ये दोनों लफ्ज़ थोड़ा सा इसमें हमें तफसील चाहिए कि सदके और कर्ज़ में क्या फ़र्क होता है। सूरत बकरा ही से ये फ़र्क बताया जाना शुरू हो जाता है कि जहाँ मन अल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु कर्दन हसना की आयत आती है, तो देखिए कि सदका क्या होता है, जिसको देने के बाद इंसान को वापस लेने की ना तो उम्मीद होती है और ना वो ले सकता है। एक दफ़ा आप सदके की नीयत से कोई चीज़ किसी को दे देते हैं ना, तो उसके बाद फिर आप उससे वापस नहीं ले सकते। हत्ता कि तोहफा, ये भी एक सदके की किस्म है। तोहफा भी दे के अगर कोई वापस मांगता है या ले लेता है, तो वो बहुत ही गंदी मिसाल उसकी हदीस में दी गई कि जैसे कुत्ता कै को करके उसको चाट ले। इतना गंदा फेल है किसी को तोहफा देने के बाद वापस लेना। तो सदका किसी को भी दिया जाए तो वो वापस ना लिया जाता है, ना उम्मीद रखी जाती है। इसके बरक्स कर्ज जो होता है वो देने के बाद उम्मीद रखी जाती है कि ये वापस लिया जाएगा। एक वो कर्ज होता है जो हम इंसानों को देते हैं, किसी की ज़रूरत थी, उसने आपसे तलब किया, आप दे देते हैं। हुक्म यही है कि आप उसको देते वक्त ही नोट कर लें कि कब वापस किया जाएगा, और दो गवाह कर लिए जाएं या लिख लिया जाए उसको, जो भी हालात हों। फिर अगर वो ना भी दे सके, तो हर दिन उसको उतनी ही रकम सदका करने का अजर होगा। लेकिन यहाँ बात है अकरदुल्लाह, अल्लाह को कर्ज देना। इस लफ्ज़ से इसकी खूबसूरती और बढ़ गई कि जब इंसानों को कुछ दिया जाता है तो इंसानों से वापस मांगा जाता है, लेकिन जब कोई चीज़ अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कहीं ऐसी जगह खर्च किया जाए कि जिससे अल्लाह के दीन को फ़ायदा हो या अल्लाह के बंदों को फ़ायदा हो, तो इसको अल्लाह ताला अपने पास कर्ज समझते हैं। यानी हम नहीं अल्लाह को कर्ज देते, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरे जिम्मे कर्ज है। कभी आपने ऐसा देखा होगा कि कोई शख्स किसी को कुछ देता है, उसको समझ आती है कि फलां जरूरतमंद है, चलो इसकी मदद कर देते हैं। जो दे रहा होता है ना, उसकी नीयत होती है मदद की, लेकिन जो ले रहा होता है ना, उसके अंदर गैरत होती है, खुदी होती है ना होती है, तो वो क्या कहता है, नहीं 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 मैं नहीं ले रहा। वो कहता है नहीं आप रख लें, कुछ नहीं होता। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है मैं रखूंगा, लेकिन ये कर्ज है, मैं फुला वक्त दे दूंगा, ये दे दूंगा। यानी लेने वाला नहीं लेता, देने वाला चाहता है मैं दे दूं। बिल्कुल यही स्पिरिट और यही रूह होती है जब बंदा दिल की खुशी के साथ अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, कि बंदा दे के भूल जाता है, वो गिन गिन के नहीं देता। बस लोग हर नेकी करते हुए सोचते अच्छा इसके ऊपर अब जन्नत में कितने महल मिलेंगे, कितनी हूरें मिलेंगी, अच्छा इसके बदले में मुझे दुनिया में क्या मिलेगा। नहीं, आप दीजिए और भूल जाइए। ये अल्लाह का जिम्मा है कि वो आपके इस कर्ज के बदले में फिर इस माल को किस तरह से लौटाता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च की मिसाल को 700 गुना से तशबीह दी गई कि एक दाना जमीन में डालते हैं, पौधा उगता है, उसमें 7 बालियां हैं और हर बाली में 100 दाने हैं, तो 700 कम अज कम बनते हैं और अल्लाह इससे भी बढ़ा देता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि यह कर्ज है, मैं इसको युदाफुलहुम, दुगना कर दूंगा उनके लिए। और दुगने का मानी सिर्फ जमा नहीं है, मल्टीप्लाई को कहते हैं, जरब का निशान जो होता है ना, यानी 3 जरब 3, फिर 3 जरब 3 क्या हुआ, 9, फिर 9 के बाद जमा 9 नहीं होगा बल्कि 9 जरब 9 होगा। अल्लाह ताला बंदे के माल को इस तरह बढ़ाता है। तो इसमें हमने ये बात देखी कि बाज दफा क्या होता है कि इंसान जब खर्च करता है तो उसका दिल होता है कि अच्छा अगर अल्लाह ने 700 गुना देना है आखिरत में तो मुझे दुनिया में वापस दे दे। दिल तो यही चाहता है ना कि आप कर्ज दुनिया में सारे ले जाए। बिलफर्ज अगर आपने 1 किलो घी किसी को अल्लाह की खुशी के लिए दिया, 1 किलो, अब अल्लाह ताला उसके बदले में आपको 700 किलो दुनिया में ही दे दे, कहाँ रखेंगे आप? आपने किसी को 1 लीटर दूध पिलाया, उसके बदले में आपके घर के बाहर एक कंटेनर आ जाए अल्लाह की तरफ से और उसमें 700 लीटर दूध हो, क्या करेंगे? फिर भी जाई होगा ना। हम लोगों को देते हैं और सोचते हैं कि फला बहुत केयरफुल है, बड़े कदरदान है, उसको दें। अल्लाह से ज्यादा हमारे अमाल की कोई कदर नहीं कर सकता। ये सिर्फ खाने पीने की चीजें, रुपए पैसे की बात नहीं है। आप अल्लाह को जो भी देते हैं ना, अल्लाह ताला ऐसे कंटेनरों में भर के वापस देता है। आपका वक्त, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं। आपकी सेहत, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं। आपकी जवानी, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं। सिर्फ नीयत अच्छी हो, अच्छी जगह पे लगे, वो सारी चीजें देखी जाएं कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला के रास्ते में दिया हुआ ज्यादा फलता फूलता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ खुशखबरी दे दी कि इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात वकरदुल्लाह कर्दन हसना युदाफु लहुम वलहुम अजरुन करीम। सिर्फ दुगने का दुगना ही नहीं करेगा बल्कि उसके अलावा और भी ज्यादा अजर देगा। अब वो पता नहीं क्या होगा। हम तो यही सोच सकते हैं ना कि जो दिया है उसके बदले में 10 गुना, 5 गुना, 8 गुना, जितना इंसान सोच सकता है उतना उसको मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह सुबहाना तआला कहते हैं कि ये तो दुगने का दुगना करके दे ही रहा हूँ लेकिन अजरे करीम दूंगा। अब अल्लाह को पता है कि ये अजरे करीम क्या है। ये अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार हो सकता है, ये जन्नत में कोई और नेमत हो सकती है, यानी बस इसके बारे में तो इंसान बस सोच ही सकता है कि अल्लाह ताला उसको क्या देगा और किस तरह देगा। और जितना इखलास होगा, जितनी नियत खालिस होगी, और जिस वक्त दिया जरूरत कितनी थी और किस मौसम में दिया, जैसे एक बीज आप डालते हैं ना, तो बीज कितना अच्छा है इसकी वजह से आपका पौधा ज्यादा अच्छा उगता है। जमीन कितनी जरखेज थी, मौसम क्या था, क्या वाकई उसके फलने फूलने का मौसम था कि नहीं, फिर इसी तरह जरूरत कहाँ ज्यादा थी। ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी नेकियों के अजर को कम करती हैं या ज्यादा करती हैं। और इसी की वजह से फिर युदाफु लहुम है, किसी का 1 मल्टीपल होता है तो किसी के 10 मल्टीपल भी हो जाएंगे, 1 से ज्यादा होते जाएंगे। और नतीजा क्या निकलेगा कि इंसान के अजर बढ़ते जाएंगे। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जिन्होंने फतेह मक्का से पहले दिया उनका अजर उन लोगों से ज्यादा है जिन्होंने फतेह मक्का के बाद दिया, क्योंकि उस वक्त नेकी की जरूरत थी, माल की जरूरत थी। हम सबको भी अपनी जिंदगी में इस चीज को नोट करना चाहिए कि कहाँ कौन सी नेकी करके मैं अपने अजर को बढ़ा सकती हूँ। जब कहीं भी नेकी का कोई सिलसिला नया नया होता है ना, तो उस वक्त जो लोग उस काम में हिस्सा डालते हैं ना, उनका अजर बाद वालों से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अबू बकर सिद्दीक का मुकाम क्यों ज्यादा है? इसलिए कि उन्होंने इस्लाम को उस वक्त सपोर्ट किया जब लोग इस्लाम को झुटला रहे थे। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि हम नेकियों के काम दिल की खुशी से करें और इस सोच के साथ करें कि अल्लाह हमारी जात से कोई नेकी फैल जाए, किसी का भला हो जाए और उसके बदले में तू हमें अजरे करीम अता फरमा। और ये जो लफ्ज़ है ना मुसद्दिक और मुसद्दिका, असल में इसमें ता थी, मुतसद्दिक था। तो अरबी जुबान का एक असूल है कि ता और स्वाद जब मिलती है तो फिर उन दोनों को स्वाद कर दिया जाता है। फिर आगे फरमाया वल्लसीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइकहुमुस सिद्दीकून व शुहदाउ इंद रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम वल्लजीना कफरू व कज्जबू बि आयातिना उलाइका असहाबुल जहीम। और जो लोग ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूलों पर, वही लोग खुश नसीब लोग हैं, यानी वो अल्लाह की जनाब में सिद्दीक और शहीद हैं, और उनका अजर और उनका नूर उनके लिए मखसूस है। इसके बरक्स वो लोग जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयतों को झुटलाया, यही लोग जहन्नुम में रहने वाले हैं। यहाँ अल्लाह ताला मजीद रग़बत दिलाते हैं कि ईमान लाने के बाद खामोशी से बैठ नहीं जाना चाहिए। हकीकत यह है कि ईमान के बाद ही अमल सवाले का रास्ता खुलता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ईमान लाने को जन्नत में जाने की दलील समझ लेते हैं। नहीं, इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालेहात। पूरे कुरान पाक में जहां भी इस तनाजर में आप देखेंगे तो आपको यही दिखेगा कि ईमान के बाद अमल सवाले। ये कैसे होता है? अब देखिए कि इसको भी एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूंगी। कोई भी बीज है आपके पास, बहुत सारी चीजों के बीज हैं, क्या बीज को देख के पता चल जाता है कि ये किस चीज का बीज है? कुछ बीज तो बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं, जैसे अगर आप किसी भी नर्सरी में जाके बीज खरीदें तो मुख्तलिफ फूलों के बीज एक ही जैसे होते हैं, हत्ता के कुछ फलों के दरख्त होते हैं उनके बीज भी उसी तरह होते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ना कि बीज किस चीज का है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उस बीज को अपने हाथ से निकाल के मट्टी के सपुर्द करना पड़ेगा। इंतजार करें, कुछ दिन के बाद कोम्पल फूटेगी। कुछ लोगों को कोम्पल से पता चल जाएगा ये कौन सा है, कुछ को उसके बाद उसके पत्तों से पता चलेगा, और कुछ को उसके ऊपर लगे हुए फल या फूल से पता चलेगा। फिर यकीन होगा कि ये बीज कैसा था और क्या था। बिल्कुल यही मिसाल हमारे ईमान की है। हम दावा करते हैं कि हम ईमान वाले हैं, कोई किसी से पूछ ले हम में से आपको अल्लाह से कितना प्यार है, आप कहेंगे बहुत ज्यादा। कितना डर है अल्लाह का? बहुत डर है। आपका अकीदा कैसा है? मेरा अकीदा बड़ा स्ट्रांग है। आपका ईमान कैसा है? बहुत ईमान है। तो भी नमाज क्यों नहीं पढ़ते? ये नहीं पता। नमाज नहीं, फुला है बहुत अच्छा लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, फुला दिल की बड़ी अच्छी है ये अलग बात है कि गिबतें करती रहती है, फुला के दिल में अल्लाह का बड़ा खौफ है लेकिन ये अलग बात है कि कपड़े बड़े खराब पहनती है। अक्सर लोग सोचते हैं ना, भाई आपको क्या पता किसी का क्या है हाल, उसके जाहिर को ना देखें। कभी ऐसा नहीं हो सकता। जो अकीदा बीज का होता है ना, वो पता कैसे चलता है? हमारे आमाल सवाले के फल से पता चलता है। बीज तो दिल में छुपा हुआ है। आपको क्या पता मेरा ईमान कैसा है, और मुझे नहीं पता आपका ईमान कैसा है। मेरा ईमान कहाँ से झलकेगा? मेरे हाल से, मेरे हुलिये से, मेरे आमाल से, मेरी इबादात से, मेरे ताल्लुकात से। जो लोग ये कहते हैं ना कि बाहर हम बड़े गुनाह कर रहे हैं या फलां बड़ा गुनाहगार है, तुम्हें क्या पता वो दिल का कितना नेक है। बाज लोग सरासर फिस्क और फजूर का काम करने वालों को चूंकि पसंद बहुत कर रहे होते हैं, वो उनके हीरोज होते हैं और वो उनकी आइडल्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि जी तुम्हें क्या पता फलां कितना नेक है, वो अल्लाह ने तो एक बिल्ली को पानी पिलाने की वजह से बख्श दिया था और एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से बख्श दिया था। ऐसा नहीं होता, ये इत्तफाकात नहीं होते। तो लिहाजा अगर मैं देखना चाहती हूँ ना कि मेरा मुकाम अल्लाह के पास क्या है, या मेरे दिल में अल्लाह सुबहान तआला का क्या मुकाम है, मेरा ईमान कैसा है, तो मुझे अपने आमाल देखने होंगे, और जितने आमाल खूबसूरत होंगे उतना ही इस बात की ये गवाही होगी कि ईमान सच्चा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे देखें किसी को बुखार होता है ना, बुखार की गर्मी अंदर है ना, लेकिन उसका असर कुछ बाहर आता है? बिल्कुल आता है। आंखें सुरख हो जाएंगी, जिस्म तपने लगेगा, सर में दर्द शुरू हो जाएगी, आंखों से एक बार दफा पानी निकलने लगता है, सर में दर्द शुरू होता है। ये किस चीज का असर है कि अंदर बुखार की गर्मी है। बस जब अंदर बुखार की गर्मी आती है ना, तो उसका असर हाल हुलिये से, चेहरे मोहरे से, उठने बैठने से दिखता है। इसी तरह जब अल्लाह की मोहब्बत की गर्मी अंदर आती है ना, तो उसका इजहार बंदे के आमाल से दिखता है। इसीलिए फिर उलाए कहुमुस सिद्दीकून, फिर बंदा सच्चा बनने लगता है, वो दीन की तस्दीक करने वाला बनता है। वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है ना, वो उसको फिर अपने अमल से साबित करना चाहता है, उसकी सदाकत देना चाहता है, वो अबू बकर सिद्दीक बन जाता है। और सिद्दीकियत का मुकाम जो है, ये आला मुकाम है, कमाले ईमान और कमाले सिद्को सफा को सिद्क कहते हैं, यानी इंसानों में नबुवत के बाद आप कह सकते हैं कि सबसे पहला मुकाम जो है वो सिद्दीकियत का मुकाम है। अल्लाह ताला ने जो हमें मुख्तलिफ मुकाम दिए हैं, सबसे ऊपर अंबिया कराम होते हैं यानी रसूल, रसूल के बाद नबी, और नबी के बाद सिद्दीक, और सिद्दीक के बाद वशुहदाओ शहीद। या तो वो अल्लाह के राह में जान दे के शहीद हो जाते हैं, और या फिर वो सारी जिंदगी शहादत हक का काम करते रहते हैं। फिर इसके बाद सालेहीन का दर्जा होता है। सबसे नीचे सालेहीन, ये आम दर्जे के नेक मोमिन, हर दौर के लोग। उसके ऊपर शुहदा, जिनकी जिंदगी डिवोट थी अल्लाह के लिए, सारी जिंदगी हक का पैगाम दिया, शहादत हक की गवाही दी, और मौका मिला तो जान भी अल्लाह को दे दी। उसके ऊपर सिद्दीक, तस्दीक करने वाले, सुन के सोच में नहीं पड़ जाते करें कि ना करें, ठीक है अब क्या करूं, सब सब सब, बल्कि तस्दीक। और इसी से फिर सच भी बोलते हैं इंसान। ये हमारे यहाँ तो उमूमन सिद्क से सच्चाई है ना, तो ये सिद्दीक है, दाल की जो पेश है ना वो इसको तस्दीक के मानों में ला रही है, वरना तो लफ सादिक होता है, सच बोलने वाले को सादिक कहते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान सच बोलता है और हमेशा सच की तलाश में रहता है, हत्ता कि उसका नाम अल्लाह तला के यहाँ सिद्दीकीन में लिखा जाता है। ये मुत्तफिक अलैह की रिवायत है। और ऐसा बंदा फिर अपने कौल और अमल से अल्लाह तला को सच्चा बन के दिखाता है, अमल से तस्दीक करता है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की। ऐसे लोगों के लिए लहुम अजरुहुम व नूरुहुम, इनके अजर भी हैं और इनके नूर भी हैं। अजर क्या है? जो काम किया उसकी मजदूरी। और नूर क्या है? क्यामत के दिन के अंधेरों में रोशनी की टॉर्च, पीछे हम पढ़ चुके, पुलसरात के अंधेरों में रास्ता दिखाने के लिए जो टॉर्च होगी या जो लाइट दी जाएगी वो इंसान के आमाल की होगी। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला हमें अंधेरों से रोशनियों की तरफ लाना चाहते हैं। यही पैगाम सूरत बकरा की आयत नंबर 256 में भी है, आयतल कुर्सी के बाद 256 से 257 में भी आता है कि अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, वो उनको अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाता है। और हम सबको अपने आप को चेक करना चाहिए कि हम किस मुकाम पे खड़े हैं। सही बुखारी की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया जन्नती अपने से ऊपर वाले लोगों को, यानी जो उनसे दर्जों में ऊंचे हैं, बाला खानों में होंगे, इस तरह देखेंगे जैसे चमकते हुए मशरकी या मगरबी सितारे को तुम आसमान के किनारों पर देखते हो। यानी अब हम आज सितारा देखना चाहें तो ऊपर देखते हैं ना, तो इस तरह एक दर्जे से दूसरे दर्जे वाले इतनी दूर होंगे जैसे जमीन से आसमान के सितारे। सोचें जरा, दुनिया में किसी का घर जरा थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना तो लोग घूम घूम के देखते हैं, हाय ये किसका घर है, ये किसकी गाड़ी गुजरी है, ये ब्रांड नेम गाड़ियां, ये कपड़े, सोचते हैं ना इंसान। जन्नत में लोगों के घर और उनकी चीजें देखेंगे लोग तो कहेंगे वाह ये इतने आला दर्जे के लोग हैं, तो इनके इतने फर्क होंगे। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी क्या ये अंबिया कराम के दर्जात होंगे, इतने बुलंद के वो सितारों की तरह चमकते हुए दिखेंगे। यानी एक दुनिया में भी स्टार्स होते हैं ना, जो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बाज़ हिदायत से भटकाने का जरिया बनते हैं। तो कहा कि जन्नत में जो ऊपर लोगों के दर्जे होंगे और वो सितारों की तरह चमकेंगे, तो क्या ये अंबिया कराम के होंगे, तो जिसको हम आम लोग हासिल नहीं कर सकेंगे? तो आपने फरमाया कि हाँ कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ये वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाए और पैगंबरों की तस्दीक की। यानी पैगंबर नहीं, पैगंबरों को सच्चा मानने वाले लोगों को भी अल्लाह ताला ये मुकाम देगा, और अल्लाह ताला हमें इन लोगों में कर ले। इसके बरक्स वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बी आयातिना, कुछ तो कुफर करके एक साइड पे हो गए, अल्लाह की नेमतों को छुपा दिया, ना माना बात को, ना माना, कुछ मानने की हद तक कहा लेकिन कज़्ज़बू, तकजीब की, डिनाई किया, बात को ना माना, हमारी आयतों को, कौन सी आयतों को, कुरान की आयतों को, अहकामात को ना माना, और कायनात में फैली हुई निशानियों को झुटलाया, सब कुछ देखते बूझते हुए अल्लाह ताला की जात का इनकार किया। क्या अंजाम है? उलाइका असहाबुल जहीम, ये जहन्नुम वाले लोग हैं, आग में जाएंगे, क्योंकि अंधेरों का सौदा किया इन्होंने। जिसको दुनिया की जिंदगी की हकीकत पता चल जाएगी ना, फिर वो इन बातों को सुन के जरूर सोच में पड़ जाएगा कि मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ।